सहनावतु सहनो भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्।
So we are in chapter 6 of Bhagavad Gita. In sloka number 10 and 11, Bhagavan gives the Bahiranga Sadhana. Before sitting into Dhyan, Bahiranga Sadhana. Oh, pehle kya karna hai? Dhyan mein baithne ke pehle. To kehte hain, yogi yunjit sadat atmanam rasi stita hai, ekaki yat chitta atma nirasi ap parigraha. Yogi yunjit सततम ध्यान करने वाला जो साधक है जिसको भगवान योगी कहते हैं, आत्मानम रहसी सीधा अपने अंतःकरण में ध्यान में स्थित हो, अपने अंतःकरण में ध्यान में स्थित हो, एकाकी अकेला बैठे। यत चित्तात्मा उसका जो है, यत मतलब संयत, संयत चित्त मतलब, चित्तात्मा मतलब माइंड और शरीर, चित्त मतलब मन और आत्मा माने यहाँ शरीर होगा। निराशी अपरिग्रह, निराशी अपरिग्रह मतलब, निराशी मतलब तृष्णा रहित, तृष्णा रहित मतलब हमें ऐसा ही फल चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं ध्यान में बैठने जा रहा हूँ और मेरे को असफलता आज मिलनी चाहिए, ऐसा नहीं, निराशी। और अपरिग्रह, परिग्रह नहीं होना चाहिए कोई साथ में, क्या करे। और सुचो उद्देश्य, देखो ये भी बाहर की बात है, बहिरंग साधना 10 और 11वां श्लोक जो है बहिरंग साधना है। सुचो उद्देश्य प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मनः न अतिचित्रम न अतिनीचम चैला जिन कुशोत्तरम। सुचो उद्देश्य एक स्वच्छ स्थान पर बैठे, देशे अच्छा, फिर क्या करे, स्थिरम आसनम आत्मनः प्रतिष्ठाप्य आसन को स्थिर करे, करके कैसा आसन हो, न अति उचित, बहुत ऊंचा भी नहीं होना चाहिए, बहुत नीचा भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, आसन किस चीज का बना हुआ हो, तो कहते हैं चैल अजिन कुशोत्तरम, सबसे पहले कुशाग्रास हो, उसके ऊपर अजिन हो, अजिन मतलब उसके ऊपर में आपका बाकिया चमड़ा हो या दूसरा कोई चमड़ा हो, फिर उसके ऊपर में कपड़ा हो, तीन चीज मिला के आपका आसन बनना चाहिए। अच्छा, ये तो बहिरंग साधना हुई, अब अंतरंग साधना क्या है। अंतरंग साधना भगवान बताते हैं 12वें श्लोक के अंदर, तत्र एकाग्रम मन कृत्वा यच्चित्तेन्द्रिय क्रिय उपविश्यासने युञ्जात योग आत्म विशुद्धये। उसके बाद बोलते हैं उपविश्य, आसन जो आपने बनाया ना उसके ऊपर बैठो, आसन छोड़ के दूसरी जगह खड़े मत हो जाओ या दूसरी जगह मत बैठो, आसन पर उपविश्य उसके ऊपर बैठे। अच्छा, कैसे बैठे, तत्र एकाग्रम मन, मन जो आपका कैसा हो, सिंगल पॉइंटेड हो, एकाग्र हो, एकाग्रचित हो। अच्छा, कैसे होगा ये, यत चित्त इंद्रिय क्रिय, यत मतलब संयमित कंट्रोल्ड, चित्त माइंड, इंद्रिय जितनी भी इंद्रियां हैं हमारी सब जो संयमित हो, सबके ऊपर हम प्रत्याहार कर चुके हैं, और प्राण, क्रिया मीन्स प्राण, यहां पर तो आप अपने को प्राण वीक्षण करके प्राण को भी संयमित करें। अच्छा, उपविश्य आसने युंजात योग आत्मविशुद्ध क्यों करें, ये ध्यान योग क्यों करें? आत्मविशुद्ध, आत्मविशुद्ध मतलब मन की शुद्धि के लिए करें। अरे हम तो बैठे थे, सोचे थे कि हमको मुक्ति मिल जाएगी, हमको ब्लिस चाहिए, ये चाहिए। देखो अभी यहाँ पर ये सविकल्प समाधि की बात चल रही है। सविकल्प समाधि का मतलब क्या हुआ कि आप जो है एक किसी वृत्ति को लेकर चल रहे हैं। अगर मान लीजिए सविकल्प से आप निर्विकल्प तक नहीं पहुँचे तो आपका क्या ये चेष्टा वृथा गई क्या? बोलते नहीं, वृथा नहीं जाएगी। क्या होगा? आत्म शुद्ध है, मन शुद्ध होगा। मन शुद्ध होगा मतलब क्यों मन शुद्ध होगा? क्योंकि आप भगवान का चिंतन कर रहे थे, आप विषयों का चिंतन नहीं कर रहे थे। विषयों के चिंतन से मन अशुद्ध होता है और भगवान के चिंतन से मन शुद्ध होता है। तो ध्यान योग से मन की शुद्धि होती है, ध्यान योग से मन की शुद्धि होती है। सविकल्प समाधि, इसमें एक विकल्प रहेगा, एक वृत्ति चलती रहेगी। तो इसके अगर हम निर्विकल्प तक नहीं पहुंचे तो इसका फल क्या है? आत्मशुद्धि, मन की शुद्धि, ये आपको मिलेगा। कैसे बैठे? समम काया शिरोग्रीवम धारयन अचलम स्थिरम, सीधा बैठे आप। काया शरीर, सिर, ग्रीवम आपका गला, सब एक लाइन में सीधा हो। धारयन अचलम स्थिर, निश्चल हो, स्थिर हो। आप जो है एक प्रयत्न करके स्थिर कर रहे हैं, कोई मूवमेंट नहीं हो। संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम, अपनी नाक के टिप के सामने देखे यहाँ। तो इसका मतलब हम लोगों ने देखा था, यहाँ देखने से आपका जो है हेडेक हो जाएगा। अब आप देखो, अब इसको देखने की चेष्टा करो, दोनों पुतली को ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे लाना पड़ेगा, तो गड़बड़ हो जाएगा। संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम मतलब होता है कि आप या तो यहाँ पर आज्ञा चक्र में देखें या अपना आँख ऐसे बंद कर लें कि आपको विषयों का ग्रहण नहीं होता है। और आँख पूरी बंद भी नहीं होनी चाहिए, अगर आँख पूरी बंद कर लेंगे तो नींद आ जाती है, नींद आ जाती है। कई लोग जो है प्रवचन में आते हैं तो सोचते हैं आँख बंद करने से जो है हमारा मन एकाग्र हो जाएगा, है एकाग्र होकर हम सुनेंगे, मगर कुछ देर के बाद में गड़बड़ हो जाता है कि मन जो है वो जहाँ देखा आँख बंद हो गई है, अब शांत हो गए, चलो अब सोने का टाइम आ गया है, तो आदमी सो जाता है, पट से सो जाता है। संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम दिश च अनवलोकयन, फिर जो है आप दिशाओं में, कौन सी दिशाएं? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण या किसी दिशा में मत देखो। आप बैठ गए हो ना, अब इसके बाद में कुछ देखना नहीं है, बाहर का विषय अब भीतर नहीं जाना चाहिए। अच्छा, फिर बताते हैं संप्रज्ञात या सविकल्प समाधि की विधि बता रहे हैं हम, इसकी विधि क्या है। तो कहते हैं प्रशांत आत्मा, प्रशांत आत्मा मतलब क्या हुआ? वृत्ति रहित मन, यहां आत्मा का मतलब होगा मन। प्रकर्षेण शांत, प्रकर्षेण शांत मतलब वृत्ति रहित, मन में कोई वृत्ति नहीं है, वृत्ति रहित जो मन है। विगत भी भय नहीं करो। कई लोग बैठते हैं फिर सोचते हैं पता नहीं क्या होगा, वहाँ से वापस लौट पाएंगे कि नहीं पाएंगे। लोगों की गलत गलत धारणा है, कई किस्म की धारणा है। विगत भी कोई भय नहीं करना है। अच्छा, विगत भी ब्रह्मचारी व्रते स्थित, ब्रह्मचारी व्रते मतलब गृहस्थी लोग के लिए किसी भी चीज़ का अति नहीं करो, कोई भी चीज़ अति नहीं करो। ऐसा नहीं हो कि अभी जो है कोरोना वायरस के लिए हम घर में बैठे हुए हैं, क्या करें, तीन तीन घंटे के तीन सिनेमे देख रहे हैं, अरे ये तो अति हो रहा है। अब उसके बाद में आप बोलोगे कि हम ध्यान में बैठेंगे सवेरे, अब आपको मालूम है क्या आएगा, अपने सारे दिन जो है वासना एकत्रित की है सिनेमा की, अब ध्यान में बैठोगे भगवान को चाहोगे तो होगा? नहीं होगा। ब्रह्मचारी वृते मतलब आपका जो है मन और इंद्रियां संयमित होनी चाहिए। वृते स्थित मन संयम मत चित्त, और ये मन जो है संयमित, विषय शून्य मन होना चाहिए। मन संयम में मतलब विषय शून्य मन होना चाहिए, क्योंकि हम सविकल्प समाधि में बैठने जा रहे हैं। अब सविकल्प समाधि में हम क्या करेंगे, एक वृत्ति लेकर हम बैठेंगे, भगवान की तरफ जाने वाली एक वृत्ति लेंगे। अब अगर विषय उसमें आ जाएगा फिर क्या हुआ, फिर तो नहीं काम हुआ ना, आप तो संसार में चले गए, आप बाहर चले गए, आप जगत में चले गए। मन संयम मत चित्त, भगवान एकदम सही बोलते हैं कि देखो आप वहां से छोड़ के आ गए, विषय छोड़ के आ गए, और उसके बाद में मेरे में भी मन नहीं लगाया, मही चित्त है। भगवान बोलते हैं उस मन को जो वहां से विषयों से हटाया उसको मही चित्त है, मेरे में लगाओ। कितना क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं, बहुत साफ साफ भगवान कहते हैं कि जो मन आप विषयों से उठा के बाहर से ले आए हो, वृत्ति रहित जो मन है उसको क्या करें हम, बोले मही चित्त है, मेरे में लगाओ, उसको भगवान का चिंतन करो, उस एक जो है वृत्ति जो है उसका चिंतन करो। मत चित्त युक्त आसीत मत पर है, मत पर है मतलब देखो बुद्धि, बुद्धि क्या हो, बुद्धि से ये निश्चित कर लो कि ये भगवान हमारे गोल हैं, यही मेरा परम लक्ष्य है। तो बुद्धि से पहले निश्चित करना होगा कि मेरे को भगवान वासुदेव चाहिए, उसको कहेंगे मत पर है, मैं तुम्हारे लिए परम हूँ, मैं तुम्हारे लिए गोल हूँ, मैंने ये निश्चित कर लिया मुझे ये चाहिए, मत पर है। अच्छा तो मत पर करने के लिए क्या करना होगा, मई चित्त, मन कहाँ देना होगा, मन भगवान में लगाना होगा। कैसा मन होना चाहिए, मन संयम में, मन संयम मतलब वृत्ति रहित मन, वृत्ति रहित जो मन है, विषयों की वृत्ति नहीं है, ऐसा शून्य मन चाहिए। फिर समाधि का अभ्यास करें, समाधि का अभ्यास कैसे करें, युंजन एवं सदात्मानम योगी नियतम मानस, युंजन एवं ऐसा अभ्यास हमको करना होगा, सदात्मन सदात्मन बराबर अपना मन जो है उस समाधि में लगाना होगा, योगी नियत मानस, नियत मानस मतलब विषय रहित मन। देखो बार बार जो है वो मन को क्वालिफाई कर रहे हैं, विशेषण दे रहे हैं कि आपका मन कैसा होना चाहिए, विषय रहित होना चाहिए। विषय रहित का मतलब आप अपने को विषयों से विड्रॉ करो, विड्रॉ करो। अब विड्रॉ कर लिया, मन को आप सस्पेंस में तो नहीं रख सकते, तो मन को क्या करना होगा, मन को कहीं ना कहीं लगाना होगा, कहाँ लगाए, मई चित्त मेरे में लगाओ। क्यों लगाओ, क्योंकि मेरे को आपको पाना है, मत पर है मेरे लिए आप ही गोल हो, मेरा लक्ष्य जो है आप तक पहुंचना है। अच्छा मत पर है, नियत मानस है, करने से क्या मिलेगा, फल बताइए भगवान, इतना जो आप खटा रहे हैं विषयों से, हमको विड्रॉ करा रहे हैं, प्रत्याहार करा रहे हैं, मुझे को मिलेगा क्या, शांतिम निर्माण परमाम मत संस्थामम अधिगच्छति, आपको शांति मिलेगी, शांति। देखो ये शांति जो है बाजार में नहीं मिलती है, शांति आप खरीद नहीं सकते हो, भगवान कहते हैं ये शांति मिलेगी, कौन सी शांति, निर्वाम परमा। देखो एक शांति हमको विषयों के प्राप्त होने से भी एक शांति मिल जाती है, मगर वो शांति कैसी होती है, बहुत अल्प समय के लिए होती है। आपको कुछ खाना है, आइसक्रीम आइसक्रीम आइसक्रीम, आप गए आइसक्रीम पार्लर में, आइसक्रीम खा लिया, आपका एजिटेशन ऑफ माइंड जो है कम हो गया, एक शांति आ गई। ये शांति कितनी देर तक रहेगी, जब तक दूसरी कोई कामना ना आ जाए तब तक रहेगी। तो भगवान कहते हैं शांतिम निर्वाण परमाम, ये कौन सी शांति है, ये मुक्ति वाली शांति है, निर्वाण परमाम। अच्छा किसके पास है, मत संस्थान मेरे पास है, और किसी के पास नहीं है। तो आपको शांति अगर चाहिए तो भगवान के पास जाना होगा, भगवान के पास। और भगवान कहते हैं कि अधिगच्छति, इसका अधिकार मेरे पास में है, मैं किसको दूंगा नहीं दूंगा मेरे ऊपर है। शांति अगर आपको चाहिए तो ये सब चीजें आपको करनी है, जितना हम बता रहे हैं, सब विकल्प समाधि की सब आपको योजना हम बता रहे हैं वैसे करना होगा। अब वो कहते हैं कि कब ध्यान सफल नहीं होगा, ये भी तुमको पता होना चाहिए, हम ध्यान में बैठे हैं कब हमारा ध्यान सफल नहीं होगा। तो कहते हैं न अति अस्नतस्तु योगो अस्ति, जो अति अस्न करता, अति अस्न मतलब जो जॉब बहुत ज़्यादा खाता है, बहुत ज़्यादा खाता है। कितना खाना चाहिए, हम लोगों ने देखा था आपके पेट की जो कैपेसिटी है उसका आधा जो है आपको अन्न से भरना है और चौथाई आपको पानी से भरना है और एक चौथाई वायु के लिए संचरण के लिए रखना है। ये नियम है। अब आपने ज़्यादा खा लिया, आपने वायु के लिए जगह नहीं रखी, पानी पीने के लिए जगह नहीं रखी, तब क्या होगा? अब उसके बाद में आप बोलते हैं योग करोगे, हम ध्यान में बैठेंगे, क्या होगा? सो जाओगे आप, क्योंकि आपने ज़्यादा खा लिया। आप देखोगे जिस दिन भी आप ज़्यादा खाते हो उसके आधे घंटे के अंदर आपको जो है नींद आनी शुरू होती है। आप सोचते हो कि भाई इसके बाद में थोड़ा सा सो लें या लेट लें, कहीं जगह मिल जाए, थोड़ी आँख झपक लें। फिर कहते हैं न चैकांतम अस्नता, किसी ने खाया ही नहीं, बोला हम उपवास करेंगे, उपवास रखेंगे, हम नहीं खाएंगे, हम योग करेंगे, नहीं होगा। न चति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुन, और वो जो बहुत ज्यादा सोता है या बहुत ज्यादा जागता है उसका भी ध्यान नहीं लगेगा। तो चार चीजें भगवान ने कही, जो ज्यादा खाता है, जो नहीं खाता है, जो ज्यादा सोता है या जो ज्यादा जागता है, वो कभी भी ध्यान में सफल नहीं होगा। अब भगवान कहते हैं कि कौन ध्यान में सफल होगा। अब 17वें श्लोक में भगवान बताने जा रहे हैं कि कैसे हम ध्यान में सफल होंगे।
युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः
युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः।
अब अगर आपको ध्यान सफल करना होगा तो आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो भगवान तीन चीज़ें बताते हैं और इन तीन चीज़ों में वो पांच विषय लेंगे। तीन चीज़ों के अंदर पांच विषय हैं। क्या है भाई? योग की सिद्धि के लिए भगवान कहते हैं युक्त आहार और विहार चाहिए। युक्त आहार और विहार, खाना भी युक्त होना चाहिए, विहार भी युक्त होना चाहिए। युक्त चेष्टस्य कर्मसु, और आपके कर्म भी ये युक्त होने चाहिए। युक्त स्वप्न अवबोधस्य, स्वप्न मतलब आपकी नींद, अवबोध जागृत है, तो आपका सोना और जागना दोनों ही युक्त होना चाहिए। अच्छा, तो इसके अंदर देखिए आपको पांच चीजें मिली। एक है आहार, दूसरा है विहार, तीसरा है कर्म, चौथा है सोना, पांचवा है जागना। पांच चीजें भगवान बताते हैं ये आपकी युक्त होनी चाहिए। अच्छा, तो क्या मिलेगा? भगवान युक्त कर लेंगे तो क्या होगा? योगो भवति दुख कहा, उसके संसार के सारे दुख खत्म हो जाएंगे, संसार के सारे दुख खत्म हो जाएंगे। अच्छा, वेदांत पर आधारित ध्यान या ब्रह्म ज्ञान पर आधारित ध्यान संसार के दुख को मिटाता है, ये आपको बराबर याद रखना होगा। आप ध्यान में बैठे मगर उसके पहले आत्मज्ञान या ब्रह्म के बारे में आपको कुछ नहीं पता है, और हो सकता है आप उसमें सफल भी हो जाएंगे, मन लय हो जाएगा, मगर क्या जब आप ध्यान से बाहर निकलेंगे तो आपका क्या दुख खत्म हो जाएगा? क्या नहीं होगा? कब दुख खत्म होगा? दुख तभी खत्म होगा जब आपने पहले श्रवण मनन किया होगा, जब आपको श्रवण काल में ये पता लगेगा कि जगत क्या चीज है और ब्रह्म क्या चीज है, उनके दोनों के लक्षण कैसे हैं। जब ये आप जान लेंगे तो ध्यान में जाके आपको ब्रह्म से जब आपकी मुलाकात होगी, जब उसका अनुभव होगा, तब आपको मिलाना पड़ेगा ना कि हमने श्रवण काल में जो सुना है वो वहाँ पहुँचे हैं कि नहीं पहुँचे हैं। कुछ लोग ध्यान में बैठ के कहते हैं कि हमको जो है वो सैंडलवुड की गंध आती है, कोई कहता है हमको भगवान के नूपुर के शब्द सुनाई पड़ते हैं। कहाँ हैं आप अभी? जब आपको सुनाई पड़ रहे हैं, आपका मन जो है अभी चालू है, विषयों को ग्रहण कर रहा है, विषयों को ग्रहण कर रहा है। अच्छा, युक्त आहार विहारस्य, युक्त का मतलब क्या है? नियमित परिमाण। युक्त का मतलब होता है नियमित परिमाण। तो आहार कितना होना चाहिए? नियमित परिमाण। नियमित परिमाण कितना है? आगे पिछले श्लोक में हम देख चुके हैं कितना अन्न खाना है, कितना पानी पीना है, कितना वायु संचरण के लिए रखना है, वो युक्त हुआ, वो नियमित हुआ, परिमाण बता दिया गया है। अच्छा, विहार क्या होता है? युक्त विहार, विहार का मतलब है सिंपल वॉक, चलना, चलना, चलना। बहुत लोग को डायबिटीज होती है और डॉक्टर बताते हैं या तो आप दवाई खा लो, नहीं तो आप चलो, खूब चलो, ताकि आपकी कैलोरी जो है वो सारी की सारी बर्न हो जाए। दो मेथड है। तो बहुत लोग क्या करते हैं, हम दवाई नहीं खाएंगे, क्या करेंगे, चलते जाएंगे, चलते जाएंगे, सारा दिन में पता नहीं कितना चलते हैं वो। अब कितना परिमित नियमित परिमाण कितना है चलने का? तो इसमें कहा गया है योजनात परम न गच्छेत, एक योजन से ज्यादा ना चले। एक योजन कितना होता है? 8 माइल। 8 माइल से ज्यादा ना चले। अब आप सोचोगे कि हमको जो है अपना डायबिटीज ठीक करने के लिए अब 16 माइल चढ़ना होगा, तब वो शुगर कंट्रोल में रहेगा, तब गड़बड़ है, तब आपका जो है वो नियमित नहीं हुआ, परिमाण नियमित नहीं हुआ। अच्छा, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, कर्म, अब जैसे जप तप आप जो कर रहे हैं ये सब सात्विक कर्म है, मगर ये भी युक्त होने चाहिए, ये भी युक्त होने चाहिए। ये नहीं कि आप माला लेके बैठे हो, आप बोलते हो अभी हम माला फेर रहे हैं लो। अरे कितनी माला फेरोगे? एक उसका नियम बना लो, नियम के बाद उसको भी छोड़ना है। आप हवन बोलोगे हम रोज करेंगे, रोज गायत्री हवन करेंगे, तो ऐसे नहीं होगा ना। नियमित करो एक, क्या हमारा ये हमने इसके नियम बना लिए हैं। अच्छा, युक्त स्वप्न अवबोधस्य, जागृत एवं निद्रा दोनों ही नियमित होनी चाहिए। कितनी निद्रा, कितना देर सोए? हमारे यहां तो हम तो बच्चे को यहां सुन सुन के हमको ताज्जुब होता है, वो 10 बजे सोते हैं, फिर 10 बजे उठते हैं, 11 बजे उठते हैं, 12 घंटा सोते हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जब तक आप विद्यार्थी हो तब तक आपकी निद्रा कैसी होनी चाहिए? श्वान निद्रा। श्वान निद्रा मतलब क्या? जैसे कुत्ता एक आहट पाने से ही जग जाता है, ऐसी निद्रा होनी चाहिए। मेडिकल साइंस कहेगा कि 6 घंटे 7 घंटे, छोटे बच्चे ज्यादा सोएंगे, 10-12 घंटा सोएंगे, सबसे छोटे जो बच्चे हैं वो ज्यादा सोएंगे, बाकी लोग को नियमित करना होगा। देखो नींद एक ऐसी चीज है, जितनी बढ़ाओगे उतना बढ़ जाएगा। भूख एक ऐसी चीज है, जितना बढ़ाओगे बढ़ता जाएगा, जितना मर्जी बढ़ा लो। आज आप 2 रोटी खाओ तो कल से 3 खाना शुरू करो, फिर 4, 5, 6 बढ़ जाएगा। नींद उसी तरह से आप बढ़ाना चाहो, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, मगर नियमित करना है हमको ना, नियमित करना है उसको। अच्छा, अब आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। गौतम बुद्ध घोर तपस्या की, घोर बहुत दिन तक उन्होंने तपस्या की। गुरुदेव कहते थे कि बोधि वृक्ष के नीचे 20 साल बैठे, वो 20 साल बैठे, और गुरुदेव बताते थे कि वो जो है उन्होंने गीता नहीं पढ़ी, गीता पढ़ी होती तो इतना टाइम नहीं लगता। तो इतना उन्होंने तप किया, तप करते करते जो है वो दुबले पतले हो गए, बहुत वीक हो गए, कमजोर हो गए। तो कमजोर हो गए तो बैठे हुए हैं, तो एक साधु और उसका एक चेला जो है उधर से जा रहा था। चेले ने साधु से पूछा कि जो है भजन के टाइम में ये बीना की तार कितनी कसें, ये प्रश्न था। चेले का प्रश्न अपने गुरु के प्रति था कि ये बीना की तार को कितना कसें। गुरु ने उत्तर दिया, ना ज्यादा ना कम। आपने देखा ना बीना के या सितार को लोग मिलाते रहते ना, तो क्यों उसको कभी टाइट करते हैं, कभी खोलते हैं, कभी टाइट करते हैं। तो युक्त करना है उसको हमको। बहुत ज्यादा टाइट कर देंगे तब भी काम नहीं होगा, बहुत ज्यादा ढीला होगा तब भी काम नहीं होगा। गौतम बुद्ध को मिल गया, बोले मेरे को मिल गया, भगवान ने इंगित कर दिया। तो वो क्या किए, वो गए नहाए धोए, उसके बाद में उन्होंने खाना वाना खाया, फिर उसके बाद में वो बैठ गए तप के अंदर। कहते हैं उनको सिद्धि मिल गई, निर्वाण मिल गया। वो भूखे प्यासे बैठे हुए हैं, कोई नियम नहीं, कोई कुछ नहीं है, कमजोर हो गए। तो ये नियम का ये सब जो है तरीके भगवान ने ये सारे बैठा बता दिए हैं। अब सविकल से निर्विकल के बीच में भगवान ने महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की, आहार विहार कर्म जागृत स्वप्न सोना कितना है ये सब बता दिया। ये इससे क्या होता है, ये सारे के सारे संसार के कारण है, ये आपको फिर खींच के नीचे ले आएंगे, वो आपको सक्सेसफुल नहीं होने देंगे, सफलता ध्यान में लाने नहीं देंगे। अब प्रश्न आता है कि साधक कब समाधिस्थ हो जाता है। आपने ये सब कर लिया, जितना उन्होंने बताया ये सब चीजें आपने अपने आप को नियमित कर लिया, परिमाण ठीक कर लिया। अब वो समाधिस्थ हो जाता है, कब होता है, ये 18वें श्लोक में भगवान बताते हैं।
यदा विनियतम चित्तम आत्मन्नेवावतिष्ठते निस्पृह सर्वकामेभ्यः युक्त इत्युच्यते तदा यदा विनियतम चित्तम आत्मन्नेवावतिष्ठते निस्पृह सर्वकामेभ्यः युक्त इत्युच्यते तदा।
यदा विनियतम चित्तम, यदा जब विनियतम विशेषेण नियतम, मन जो है चित्तम जो है आपका विशेष से आपने उसको नियंत्रण में कर लिया है। तो अंतिम नियंत्रण क्या है, उस नियंत्रण की काष्ठा क्या है, कब हम समझेंगे कि ये हमारा मन पूरा नियंत्रित हो गया। तो कहते हैं निरुद्ध अवस्था मतलब सर्वशून्यता, अब वहां पर वृत्तियां नहीं है, निरुद्ध अवस्था कहते हैं उसको। कोई वृत्ति नहीं है, अब मन और आत्मा एक हो गए हैं। यदा विनियतम चित्तम आत्मनि एव प्रतिष्ठते, मन आत्मा में लीन हो गया। क्योंकि जब मन क्या है, मन इज अ फ्लो ऑफ थॉट्स, वृत्तियां को ही मन कहते हैं। अब वृत्तियां खत्म हो गई, अब क्या है फिर मन, मन जो है उसमें लय हो गया, आत्मा में लय हो गया। मगर ये लय नींद की तरह लय नहीं है मन का। देखो हमारा मन जो है नींद में रोज लय होता है, मगर हमको उसका भान नहीं रहता है, वो तामसिक स्टेट है, तामसिक अवस्था है। ये हमको कब सिद्ध करना है, सात्विक अवस्था में करना है। सात्विक अवस्था क्या है, सात्विक अवस्था है कि मन भगवान की तरफ लगा हुआ है, विषयों से हमने अपने मन को हटा लिया है। उस सात्विक अवस्था के अंदर मन को जब हम ले आएंगे और वृत्तियां को सब हटा देंगे, तब उसको समाधि कहेंगे, तब समाधि कहेंगे। अच्छा, यदा निष्प्रिय सर्वकामेभ्य दृष्ट या अदृष्ट सब भोगों की लालसा से रहित हुआ हुआ जो मन है, अब उस मन के अंदर कोई कामना नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर कामना आ गई कि हमको ये फल चाहिए, फल जो है दृष्ट भी हो सकता है अदृष्ट भी हो सकता है, तो दृष्ट या अदृष्ट फल की कोई हमारे में कामना नहीं है, कोई कामना नहीं है। हमको स्वर्ग भी नहीं चाहिए, हमको इस लोक के विषय का सुख भी नहीं चाहिए, यानी परम वैराग्य विषयों से चाहिए, परम वैराग्य। आपको अगर वैराग्य नहीं होगा तो आपका ध्यान नहीं लगेगा, और वैराग्य कैसे आएगा, विवेक से आएगा। आप अगर चाहोगे कि जबरदस्ती कि मेरे को आइसक्रीम की लालसा है, मैं कल से नहीं खाऊंगा, तो वो वैराग्य नहीं हुआ। आपको विवेक से उसको ठीक करना होगा कि ये आइसक्रीम अनात्म वस्तु है, ये हमें परमानेंट सुख कभी नहीं दे सकती, इसका सुख हमें क्षणिक मिलेगा और उसके बाद फिर हमारे में कामना आ जाएगी, फिर कामना आएगी दूसरी। ये विवेक के आधार पर अगर हम अनात्म वस्तुओं का चिंतन करें और उसका फल देखें, तभी आपको वैराग्य पूरा आएगा, नहीं तो वैराग्य पूरा नहीं होगा। तो परम वैराग्य निर्विकल्प समाधि का कारण है। जब तक परम वैराग्य नहीं होगा तब तक आपको निर्विकल्प समाधि नहीं होगी। परम वैराग्य का मतलब आपको विषयों से पूरा पूरा हटना है। विषयों से पूरा पूरा हटना है मतलब क्या है कि मेरे मन में कोई लालसा नहीं है। किस चीज़ की लालसा नहीं है, मुझे यहाँ इस लोक में भी कोई सुख नहीं चाहिए विषयों से। क्यों नहीं चाहिए आपको विषयों से, क्योंकि विषयों के सुख हमको जो है परमानेंट सुख नहीं देते, परमानेंट सुख नहीं देते। इनका सुख जो है कम है, छोटा है, खत्म हो जाता है। चूंकि ये खत्म हो जाता है और मेरे को सुख दिया, इसलिए मैं बार बार उस सुख को पाने के लिए विषयों में जाता हूं। देखो सुख सबको चाहिए, सब आदमी सुख ही सुख चाहते हैं। इस विषय ने मेरे को सुख दिया, ये हमारा अनुभव है, और इस अनुभव के कारण हम उस विषय में बार बार जाते हैं। क्यों? कि सुख मिलेगा, सुख मिलेगा, सुख मिलेगा। तो निष्प्रिय सर्वकामेभ्य, मतलब कोई भी कामना नहीं होती, तदा युक्त इति उच्यते, ऐसा योगी युक्त है, समाधिस्थ है, परमात्मा में स्थित है। अब आपको जानना हो कब मेरी समाधि कंप्लीट हुई, कैसे जाने, ऐसा जब होगा तब, जब चित्त के अंदर आपकी कोई कामना नहीं है, वृत्ति शून्य आपका मन है, इसको निरुद्ध अवस्था भी कहते हैं। अच्छा, अब ऐसे योगी के समाधिस्थ चित्त की एक उपमा दी गई है, एक समाधिस्थ चित्त की उपमा। अच्छा, ये खाने वाला उपमा नहीं है।
यथा दीपो निवातस्थः,
यथा दीपो निवातस्थः,
निंगते सोपमा स्मृता, निंगते सोपमा स्मृता, योगिनो यतचित्तस्य, योगिनो यतचित्तस्य, युञ्जतो योगमात्मनः, युञ्जतो योगमात्मनः, यथा दीपो निवातस्थः, निंगते सोपमा स्मृता, योगिनो यतचित्तस्य, युञ्जतो योगमात्मनः।
अब एक एक वर्ड को हम लेंगे, डिफरेंट जगह से श्लोक से हम उसको उठा के लाएंगे, और आप देखिए, यत चित्तस्य संयत अंतकरण निरुद्ध चित्त वृत्ति, मन विशुद्ध सत्व में है, मन में राजसिक तामसिक कोई भी वृत्ति नहीं है, राजसिक या तामसिक कोई भी वृत्ति नहीं है, विशुद्ध मन। यत चित्तस्य योग युञ्जतो, योग युञ्जतो निर्विकल्प समाधि में स्थित, साधक इस योग का अभ्यास कर रहा है। अच्छा, योगिन है, ऐसे को क्या कहते हैं, ऐसा योगी, ऐसा योगी जो निर्विकल्प समाधि के लिए शुद्ध अंतःकरण से, संयत अंतःकरण से, निवृत्त चित्ती वृत्ति से, जिसमें चित्त की वृत्ति नहीं है, ऐसा योगी आत्मना, उस योगी का मन जो निर्विकल्प समाधि का अभ्यास कर रहा था, उसके मन में कोई हलचल नहीं है, कोई राजसिक तामसिक वृत्ति नहीं है, कोई विक्षेप नहीं है, कोई मूर्ता नहीं है। विक्षेप राजसिक वृत्ति, मूर्ता तामसिक वृत्ति, विक्षेप नहीं है या मूर्ता नहीं है। सा उपमा स्मृता, सिद्ध पुरुषों ने जिन्होंने ये अवस्था देखी है उसकी एक उपमा देते हैं। जिन लोगों ने इसका अनुभव किया है, उस स्थिति का अनुभव किया है, उसके लिए एक एक उपमा देते हैं, एक एग्जाम्पल देते हैं आपको। क्या एग्जाम्पल है? यथा निवातस्थ, यथा निवातस्थ जहां पर हवा नहीं हो, ऐसी जगह, ऐसी जगह। हम लोग का शिकागो कैसा है? इससे विंडी सिटी ना, बहुत यहां पर बात है। यहां पर ये बता रहे हैं ऐसा ही जगह जहां पर निवात, हवा नहीं है, है? यथा निवातस्थ दीपक, दीपक एक दीपक है, हवा नहीं है। दीपक अगर हवा में रख देंगे तो क्या होगा? या तो उसको हवा बुझा देगी, या अगर कमती हवा होगी तो उसकी जो फ्लेम है, उसका जो लौ है, वो क्या होगी? वो कांपेगी ना, कांपेगी। अच्छा, न इंगते, इंगते मतलब विचलित नहीं होता है, विचलित नहीं होता है। अच्छा, तो ऐसी अवस्था में क्या होता है कि दीपक की लौ के अंदर चमक है मगर कंपन नहीं है। देखो, उस दीपक को आप विजुलाइज करने की चेष्टा कीजिए। एक दीपक जल रहा है और चारों तरफ में कोई निवात स्थान है, उसके अंदर हवा नहीं लग रही है। तो हवा नहीं लग रही है तो उस दीपक के अंदर में प्रकाश होगा, उसमें चमक होगी, और उसकी लौ में कंपन नहीं है, कंपन नहीं है। अच्छा, तो लौ निश्चल है और प्रकाशमय है। लौ निश्चल है, निश्चल का मतलब उसमें राजसिक तामसिक वृत्ति नहीं है। क्या है? प्रकाशमय है। प्रकाशमय सत्वगुण जब होता है तो प्रकाशमय होता है। सत्वगुण जब होगा तो प्रकाशमय होगा। केवल शुद्ध सत्व है, प्रकाशमय है, सत्व की प्रधानता है, सत्य की प्रधानता है, ऐसा उपमा देते हैं हम लोग। तो इसका मतलब क्या हुआ? जब हम वहां पर पहुंच जाएंगे तो क्या होगा? वहां क्या अंधेरा होगा? टोटल अवेयरनेस होगा मगर वृत्ति शून्य होगा, वृत्ति शून्य होगा, टोटल अवेयरनेस। अच्छा, वो प्रकाश ऐसा प्रकाश की तरह नहीं है जैसा हम प्रकाश देखते हैं, वो स्वयं प्रकाश है। स्वयं प्रकाश में अवेयरनेस, आप पूरे उसको अनुभव कर पाओगे, जागृत अवस्था की तरह अनुभव कर पाओगे। ये नींद वाला मन लय नहीं है, नींद के अंदर भी आपका मन लय होता है, ये जागृत अवस्था में मन लय हुआ है। जागृत अवस्था में मन वृत्ति शून्य है, जागृत अवस्था के अंदर वृत्ति शून्य मन है ये। अच्छा, अब अगले 3.5 श्लोक में, 3.5 श्लोक का मतलब 20, 21, 22 और 23 के आधे श्लोक में भगवान निर्विकल समाधि का वर्णन करते हैं, और ऐसा निर्विकल समाधि निश्चय करना चाहिए। देखो, अब सविकल्प से हम निर्विकल्प की तरफ जा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप भगवान हमको लेके जा रहे हैं। अगले 3.5 श्लोक के अंदर भगवान निर्विकल्प समाधि की चर्चा करेंगे। 20वां श्लोक,
यत्रो परमते चित्तम,
यत्रो परमते चित्तम
निरुद्धम योग सेवया,
निरुद्धम योग सेवया
यत्र चैवात्मनात्मानम,
यत्र चैवात्मनात्मानम
पश्यन्नात्मनि तुष्यति,
पश्यन्नात्मनि तुष्यति यत्रो परमते चित्तम
निरुद्धम योगसेवया, यत्र चैवात्मनात्मानम पश्यन्नात्मनि तुष्यति।
यत्र, यत्र मतलब यहाँ स्थान नहीं, यहाँ पर यत्र का मतलब होगा यस्मिन काले, जिस समय, जिस समय। अच्छा, वो समय कब आएगा भाई? योग सेवया, योग सेवया, योग की सेवा करनी होगी, योग की सेवा। योग की सेवा का करने का मतलब क्या है? योग का अनुष्ठान करना। योग का अनुष्ठान करने का मतलब है योग का अभ्यास प्रेम पूर्वक करना। योग का अभ्यास प्रेम पूर्वक करना होगा। देखो सविकल्प समाधि जो है इसका जो है हमको बहुत दिन तक जो है इसका अभ्यास करना होता है। आप एक दिन के अंदर उस सविकल्प से निर्विकल्प में नहीं पहुंच जाओगे, एक दिन में नहीं होगा ये, बहुत दिन तक इसका अभ्यास करना होगा। कैसे करना होगा? प्रेम पूर्वक। मैकेनिकल अभ्यास नहीं चाहिए आपको, प्रेम से उसको करना होगा। और इसको, इस अभ्यास को जो है परिभाषित किया है पतंजलि ने, सातु दीर्घ काल नैरंतरम आसेवित दृढ़ भूमि, नैरंतरम आसेवित प्रेम से, विद डिवोशन, विद भक्ति, दीर्घ काल, दीर्घ काल तक करना है उसको। तो आप जो है सविकल्प समाधि से निर्विकल्प समाधि के अंदर जाने के समय उकता मत जाना, मैं 2 साल से कर रहा हूं क्या वो अभी तक आ नहीं रहा है निर्विकल्प समाधि। जैसे ये चिंता आई तो आपका समाधि खत्म, समाधि खत्म। क्योंकि आगे भगवान कह चुके हैं कि आपको जो है तृष्णा रहित होना रहे होगा, कामना रहित होना होगा, मन में किसी किस्म की कामना ना हो। अच्छा, चित्तम निरुद्धम उपरमते, मन की वृत्तियां शांत, निरुद्ध भूमि कहते हैं। सर्वतो निवारित प्रचारम, माने मन जो है चंचलता रहित है। चित्त निरुद्धम उपरमते, कहां से उपरम करें? विषयों से। मन कहां जाता है? विषयों में ही तो जाता है। उपरम कहां से करना है? विषयों से उपरम करना है इसको। कैसा उपरम करना है? तो इसके जो है महात्मा लोग 2 एग्जाम्पल देते हैं। जैसे निरंधन अग्निवत, निरंधन अग्नि जब जलाते हैं ना, अभी जैसे अभी समर आएगा ना, सब लोग अपने अपने बैकयार्ड में क्या करते हैं, बैकयार्ड में सब वो लोग अपना अपना फायर प्लेस में जाते हैं, फिर वो लोग अग्नि जलाते हैं, फिर अग्नि जलाने के बाद में वो काठ वाट से जब अग्नि जलाते हैं, एक ऐसी स्थिति आ जाती है जब आपका काम हो गया, अब अग्नि आस्ते आस्ते शांत हो जाती है। क्यों शांति हो रही है? कि उस काठ में अब ईंधन नहीं रह गया। जब तक उसमें ईंधन है तब तक वो अग्नि जलती रहेगी। जैसे ही ईंधन खत्म हो गया उसके बाद क्या होगा? वो पड़ी हुई है वैसे की वैसे ही है, अब वो हिलती नहीं है, उसमें कोई फ्लेम नहीं है, कोई फ्लेम नहीं है। तो बोलते वैसा जो है निरंधन अग्निवत ऐसा शांत हो जाएगा। या तप्त शिलोपरि क्षिप्त जलवत, आप लोग को अच्छा समझ में आएगा। आप लोग जब डोसा बनाते हो तो उस प्लेट पर क्या करते हो? उसके ऊपर कुछ पानी छिड़कते हो ना, आवाज होती है। या आप अगर गर्म तवे के ऊपर में थोड़ा सा पानी, ज्यादा पानी नहीं, 2-4 बूंद, फिर उसको देखो क्या होता है, वो तुरंत सूख जाता है, एकदम तुरंत सूख जाता है। उसको कहते हैं तप्त शिलोपरि क्षिप्त जलवत, जैसे गर्म तवे पर पानी सूख जाता है, अब नहीं है पानी। सूख जाने का मतलब वृत्तिवत, कोई वृत्ति नहीं है, ये उपमा है। मन समाधि के अभ्यास से उपरम एवं शांत हो गया है। यत्र चैवम आत्मना आत्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति, आत्मना, यहां पर आत्मना का मतलब है मन। कौन सा मन? समाधि परिशुद्धेन अंतकरण, समाधि के अभ्यास से मन जो शुद्ध हुआ। देखो आत्म विशुद्ध है, आगे एक बार आया ना, ध्यान योग से मन शुद्ध होता है। क्यों शुद्ध होता है ये आपको हमने बता दिया। ध्यान योग करने से, सविकल्प समाधि करने से मन शुद्ध होता है। क्यों शुद्ध होता है आपको आगे बता दिया हमने, क्योंकि मन भगवान का चिंतन कर रहा है इसलिए शुद्ध हो रहा है। आत्मानम, यहां पर ये आत्मानम क्या चीज है? ये आत्मा है। कौन सी आत्मा? परम चैतन्य ज्योति स्वरूप। तथा जिस काल में समाधि द्वारा अति निर्मल स्वच्छ हुए अंतःकरण से परम चैतन्य ज्योति स्वरूप आत्मा का साक्षात करता है, वह अपने आप में ही संतुष्ट हो जाता है, तृप्ति लाभ करता है, आत्मनि तुष्यति, फिर वो संतुष्ट हो जाता है, तृप्त हो जाता है, कृतकृत्य हो जाता है। देखो हम लोग तुष्ट तो संसार में भी होते हैं, हमको कुछ चाहिए अगर हमको मिल गया तुष्ट हो गए, मगर कुछ देर के बाद में फिर वो तुष्टता संतुष्टता खत्म हो जाती है। मगर ये तुष्टता ये परमानेंट है, एक बार निर्विकल समाधि में हमको अगर मिल जाए सफलता तो हमारी तुष्टि जो है कृतकृत्या पूरी हो गई, मन शांत हो गया है, या मन में आत्मा का आकार ले लिया। कैसा होता है पे, जैसे जो छोटे बच्चे कई बार देखते हैं ना कि अपने क्या बोलते हैं वो लोग, अपने अपने वो स्टफ टॉय लेके सोते हैं ना, अपना डॉगी लेके सो रहे हैं, बच्चों का अभ्यास यहाँ पर ज़्यादा अभ्यास कराते हैं लोग, माँ बाप के पास बच्चों को नहीं सुलाते हैं, उनको जो है जन्म से ही आदत डाली जाती है कि आपको अकेले रहना है, ये अमेरिका की ट्रेनिंग है। इंडिया में कैसा होता है, दूसरा होता है, माँ बाप के पास में सोते हुए, तो उसको फिर कैसे उसको समझाएं, तो लोग एक उसको जो है स्टफ टॉय दे देते हैं, जिसको जो जानवर अच्छा लगे, किसी को कुत्ता अच्छा लगता है, किसी को दूसरा कुछ अच्छा लगता है, तो वो स्टफ टॉय लेके वो सो जाता है, जैसे ही वो मिल गया वो नींद में चला गया। ठीक उसी तरह से योगी का मन भी शांत हो जाता है अपने आप में। अच्छा, नेक्स्ट।
सुखम आत्यंतिकम यत्तद, सुखम आत्यंतिकम यत्तद, बुद्धि ग्राह्यम मतिन्द्रियम,
बुद्धि ग्राह्यम मतिन्द्रियम,
वेत्ति यत्र न चैवायम,
वेत्ति यत्र न चैवायम,
स्थितश्चलति तत्ततः,
स्थितश्चलति तत्त्वतः,
सुखमात्यन्तिकं यत्तद, बुद्धिग्राह्यं मतिन्द्रियं, वेत्ति यत्र न चैवायम, स्थितश्चलति तत्त्वतः।
तो योगाभ्यास से एकाग्र किया हुआ अंतकरण, योगाभ्यास से हम बराबर अभ्यास करते रहे हैं, करने से हमारा कैसा मन हो गया, एकाग्र हो चुका है। यत्र जब, अच्छा, सुखम आत्यंतिकम, जिस सुख को नापा नहीं जा सकता उसको कहते हैं सुख आत्यंतिकम। आपको हमने कई बार समझाया है कि ये जो सुख है, इस सुख के एक कण के एक फ्रैक्शन से ब्रह्मा से लेके पिपीलिका तक पास्ट में प्रेजेंट में एंड फ्यूचर में संतुष्ट रहते हैं, सब सुखी रहते हैं। मगर आप उस सुख सागर को जब पा लेते हो, उस सुख को जब पा जाते हो, सुखम आत्यंतिकम, उसका कोई अंत नहीं है ऐसा सुख, यत्तद, यत्तद मतलब अनर्विचनीय, उसको आप परिभाषित नहीं कर सकते, उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते आप, क्योंकि हमारा शास्त्र कहता है यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, जहाँ जाकर वाणी रुक जाती है, अब वाणी से आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते, और मन से प्राप्त नहीं कर सकते। मन से प्राप्त करने का मतलब क्या है, अगर आपने उस सुख को मन से अगर समझ लिया तो वो सुख विषय बन गया, वो सुख विषय बन जाएगा। अति इंद्रियम, इंद्रिय गोचर अतीतम, जो मन एवं इंद्रियों के अग्राह्य है, यानी वह तत्व विषय नहीं है, मन और इंद्रियों के अतीत है, वो अतीत है, इंद्रिय गोचर वो सुख नहीं है। मगर कहते हैं बुद्धि ग्राह्यम, भगवान कहते हैं कि इसको हम बुद्धि से हम समझ सकते हैं, अरे ये क्या हुआ, आज तक तो हम सुनते आए कि मन और बुद्धि से आप उसको पकड़ नहीं सकते, मगर आप बता रहे हो कि सुख जो है ये उसे समझ सकते हैं बुद्धि के, कौन सा ये बुद्धिग्राह्य है। यह मन की अंतिम वृत्ति यानी चरम वृत्ति ग्राह्य है, इसके बाद कोई वृत्ति नहीं होती है, आप सविकल्प से निर्विकल्प की तरफ जा रहे हैं, आप जिस वृत्ति जो आपकी लास्ट वृत्ति है उसके बाद अब वृत्ति खत्म हो गई, इस लास्ट वृत्ति अंतिम वृत्ति की बात हो रही है। दृश्यते अग्रया बुद्धया, उसमें कठोपनिषद कहता है इसको बुद्धिग्राह्य इसलिए कहा है कि अंतिम वृत्ति क्या है, ब्रह्माकार वृत्ति है। आप जो भी विकल्प लेके चल रहे हो, जो भी वृत्ति लेके चल रहे हो, हम ब्रह्मास्मि हम ब्रह्मास्मि या सोहम 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 या जो कोई भी आप एक विकल्प लेके चल रहे हो, भगवान का चिंतन कर रहे हो, उसका क्या होगा, इस ब्रह्माकार वृत्ति के पूर्व साधक ने श्रवण मनन निधिध्यासन किया है। आपको ध्यान के पहले श्रवण मनन निधिध्यासन, निधिध्यासन मतलब सविकल्प समाधि, सविकल्प समाधि वो किया है, वो सब अभ्यास चल रहा है उसका। यह अवस्था मैकेनिकली अथवा फोर्सिबली नहीं प्राप्त की जा सकती, ज्ञान और अभ्यास से प्राप्त होती है। ज्ञान और अभ्यास, कंटिन्यूसली अभ्यास करते 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 वो ब्रह्माकार वृत्ति एक बार लय हो जाएगी। जब लय हो जाएगी, जब तक ब्रह्माकार वृत्ति है ना, तब तक त्रिपुटी है। त्रिपुटी मतलब ध्यान करने वाला, ध्यान जिसके ऊपर किया जा रहा है, और ध्यान, तीन चीजें चल रही हैं एक साथ। जब वो वृत्ति लय हो जाती है तो ध्यान करने वाला खत्म हो गया, क्योंकि ईगो तक नहीं है वहां पर, अहंकार नहीं है, मन लय हो चुका है, ध्यान करने का प्रोसेस जो है वो भी बंद हो गया। अब क्या बच गया, जिसके ऊपर ध्यान कर रहे हैं, बस वही रह गया। तो सत्वगुण प्रधान मन, ऐसे मन की अंतिम वृत्ति से यह सुख ग्राह्य है, अन्यथा यह सुख मन एवं इंद्रियों से पकड़ा नहीं जा सकता। केवल वो अंतिम वृत्ति, जिस वृत्ति के बाद में और कोई वृत्ति नहीं है, उसके पहले वाली वृत्ति भी नहीं उसको पकड़ पाएगी, उसके पहले वाली वृत्ति भी नहीं पकड़ पाएगी। अंतिम वृत्ति जिसके बाद वृत्ति का लय हो जाता है, उस वृत्ति के ग्राह्य यह सुख है, वेत्ति जाना जाता है। अच्छा, ये जानने के बाद फिर क्या होता है, यत्र अयम स्थित तत्वता न चैव चलती, यत्र यस्मिन काले, अयम स्थित साधक स्थित हो गया समाधि के अंदर, स्थित है तत्वतः आत्मतत्व में स्थित है, कहाँ पहुंच गया, वृत्तियां खत्म हो गई, कोई अब वृत्ति नहीं रही, क्या बचा, आत्म तत्व बचा, उसके अंदर वो स्थित है। इसके बाद में क्या, न चैव चलती, फिर विचलित नहीं होता, फिर विचलित नहीं होता। दूसरा क्या होता है, अहंकार की मृत्यु हो गई, अहंकार की मृत्यु इस स्टेट में होगी। अच्छा, तीसरा क्या होता है, उसके बाद में फिर जो है वो कभी गिरता नहीं है, संसारी नहीं होता है, गिरता है संसारी नहीं होता, मतलब क्या हुआ, शरीर तो रहेगा इसके बाद भी, आप ध्यान के बाद जब बाहर आओगे, शरीर तो है अभी भी, मगर क्या खत्म हो गया, जीवत्व तो खत्म हो गया, जीवत्व तो खत्म हो गया, मतलब आइडेंटिफिकेशन विद ग्रॉस बॉडी सरल बॉडी अब नहीं रहेगा, अब आइडेंटिफिकेशन नहीं रहेगा। अच्छा, अब 20वें 21वें श्लोक में अभी तक हमने क्या देखा, जब समाधि का अभ्यास से मन शांत हुआ, समाधि का अभ्यास करते रहना होगा, सविकल्प समाधि का अभ्यास करने से मन शांत होता है, जब मन में आत्माकार हुआ, तुष्ट हुआ, उसके बाद आस्ते आस्ते क्या होगा, मन जो है जब लय होगा तो आत्माकार ले लेगा। आत्माकार का मतलब मन तुष्ट हो गया, कृतकृत्य हो गया, फुलफिलमेंट हो गया। कृतकृत्य का मतलब क्या हुआ, हमको इस जीवन में जो पाना था हमने पा लिया, हमको जो पाना था पा लिया, और इससे ज़्यादा हमको और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, आत्मसुख जो कि इंद्रिय मन से अगोचर है मगर लास्ट बुद्धि के थॉट से ग्राही है, बुद्धि के अंतिम वृत्ति से, अंतिम वृत्ति अभी तक सविकल्प समाधि थी, वृत्ति खत्म हुई, निर्विकल्प समाधि हो गई पट से, उस अंतिम वृत्ति से ये ग्राह्य है, और एक बार इसमें शिष्ट होने के बाद संसार में गिरता नहीं, अहंकार का अंत हो गया। ये 20वें 21वें श्लोक में हमने देखा, उसके बाद में 22।
यम लब्ध्वा चापरं लाभम्,
यम लब्ध्वा चापरं लाभम्,
मन्यते नाधिकं ततः,
मन्यते नाधिकं ततः,
यस्मिन् स्थितो न दुःखेन,
यस्मिन् स्थितो न दुःखेन,
गुरुणापि विचाल्यते
गुरुणापि विचाल्यते
यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते
यम लब्धा इस आत्मलाभ के पश्चात यम लब्धा मिल गया मेरे को इस लाभ लाभ के पश्चात न अपरम लाभम मन्यते न अधिकम ततः अब योगी आत्मलाभ के सुख को जब पा लिया अब वो देखता है इससे बढ़कर और कोई लाभ ही नहीं है इससे बढ़कर कोई सुख ही नहीं है क्यों नहीं है इससे बढ़कर सुख क्योंकि हमको सुख का स्रोत मिल गया जहां से सब सुख आते हैं वो हमको रिजर्वायर मिल गया वो भंडार हमको मिल गया अब उससे अच्छा उससे बढ़कर कोई सुख और नहीं है अच्छा यस्मिन स्थित इस अवस्था में स्थित योगी ऐसा योगी न दुखे न गुरुना आप विचार लेते बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता है जितना भारी दुख आ जाए चलायमान नहीं होता है क्यों नहीं चलायमान होता है दुख कौन देता है देखो दुख हमने कई बार देखा है कि दुख हमको जो है ये BMI PFT OET देता है ये हमने कई बार देख लिया है और जब हम इसको छोड़ के यहां आ गए तो ये दुख तो खत्म हो गए सारे ना हम तो इन सब को पार करके आ गए यहां पहुंच गए हम ये तो कभी दुख नहीं देता हमको इसको तो हम सच्चिदानंद कहते हैं ये कभी दुख नहीं दे सकता ये आत्मा है दुख कहां से आता है आत्मा से आता है तो दुख अनात्मा से दुख आता है अब अनात्मा को पार करके हम चले गए आत्मा में पहुंच गए अब दुख कैसे आएगा अब अगर दुख भी आया तो उसको पता है गोरना पीना भी ये तो ऐसा होने वाला है देखो इस स्थिति के बाद भी जो है शरीर जो है खत्म नहीं होता अगर शरीर छूट जाता तो फिर आपको ज्ञानी भक्ति इस दुनिया में नजर नहीं आते या ज्ञान के रास्ता दिखाने वाले लोग नजर नहीं आते और शरीर रह जाता है शरीर रहेगा क्यों शरीर रहेगा कुछ को अभी सुख और दुख और भोगने हैं अभी एक नियमित सुख और दुख को भोगने के लिए ये हमें शरीर मिला है तो उसके बाद भी सुख दुख भोगेंगे मगर जो अज्ञानी है अज्ञानी मतलब जो इस शरीर को ही आत्मा मानता है वो क्या कहेगा मैं तो बहुत दुखी हूं क्यों भाई सिर दर्द है मेरे को सिर दर्द हो गया हेडेक है मैं बहुत दुखी हूं ज्ञानी कहे क्या कहेगा यानी कि मेरे सिर में दर्द है मगर सिर जो है मेरा है मैं सिर से अलग हूं देखो कैसे सोचता है ज्ञानी जैसे मेरी किताब तो किताब आपसे अलग है कि नहीं है मेरी पेंसिल मेरे वस्त्र मेरा शरीर उसी तरह से शरीर भी मेरे से भिन्न है मेरा सिर मेरे से अलग है ज्ञानी सोचता है मेरे सिर में दर्द है सिर में दर्द रहे हम क्या करें मैं तो सिर से अलग हूं तो उसको जो है कोई फर्क नहीं पड़ता है ये तो होगा देखो ज्ञानी को भी मृत्यु आएगी उसका शरीर भी मरेगा शरीर छूटेगा उसको मृत्यु का भय नहीं है मगर अज्ञानी को मृत्यु का भय है ज्ञानी जानता है कि ये शरीर जो है जाएगा ही निश्चित जाएगा क्यों जाएगा भगवान राम का भी गया है कृष्ण का भी गया है जिसने भी ये पंच धातु का बना हुआ ये शरीर लिया है उसको शरीर छोड़ना है यही नियम है ऐसा सबको छोड़ना पड़ता है कोई एक्सेप्शन है यहां पर कोई आदमी दिखाई पड़ता है जो 125 साल के ऊपर का हो यहां पर पूरी दुनिया में नहीं दिखाई पड़ता है हमको सब शरीर छूटता है इसलिए मृत्यु का भय नहीं होता है, मृत्यु आएगी मैं मृत्यु का भय नहीं है, उसको मालूम है तो ऐसा होता ही है, बस ठीक है। यम लब्धा च परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन स्थित न दुखे न गुरुनापि विचाल्यते। फिर भारी से भारी गुरु, गुरु मतलब भारी, और गुरु का एक मतलब होता है कि गुरु जो है शिष्य का अज्ञान को नाश कर देता है, इसलिए उसको गुरु कहते हैं। गुरुनापी, गुरुनापी भारी से भारी दुख है, उसको पता है क्या भारी से भारी दुख आएगा, ये तो है ऐसा ही है ना, भी चल लेते। अब हमारी सारी दुनिया के लिए सबसे भारी दुख क्या है? एक ही दुख है सारी दुनिया में, इससे भारी कोई दुख ही नहीं है। जब मर्जी आप टीवी खोल लो, कोरोना छोड़ के कुछ है ही नहीं, कोई बात ही नहीं है, सब देश में कोरोना कोरोना कोरोना, इतने मर गए, इतने आए, इतना टेस्ट किया, इतना ही किया, कब जाएगा? अब चला जाएगा। गुरुनापी ना विचार लेते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः।